हम लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं अंतर यात्रा के रूप में कर रहे हैं, करीब 26-28 लोग हैं। मन में तुम्हारे प्रश्न उठता है कि अंतर यात्रा क्या है जो मंदिर को यात्रा करें, आपके द्वारा हम लोग गाइडलाइन चाहते हैं कि उसमें प्रवेश करें अंदर में, वो रास्ता चाहते हैं।
ठीक है, ठीक है। अंतर यात्रा क्या है? यात्रा एक साथ कई स्तरों पर होती है। ऐसा नहीं है कि केवल अंतर यात्रा हो रही है या केवल बाहर की यात्रा हो रही है। ट्रेन से जाते हुए हम सब ने अनुभव किया होगा, मेरा तो फेवरेट होता था कि बाहर देख रहा हूँ तो जो दृश्य दिखते थे मुझे लगता था अरे अगर मैं इस गांव में होता, फिर आपकी फैंटेसी वर्ल्ड शुरू हो जाती है। तो यात्रा कई स्तरों पर एक साथ होती है, और एक है जो अभ्यांतरिक यात्रा जिसके बारे में हम लोगों को मालूम भी नहीं होता है एक लंबे समय तक। तो अंतर यात्रा के एक तो है कि हम अपने अंदर जाकर के आत्म तत्व को ढूंढ रहे हैं, पर उसके पहले जो बाहर की यात्रा हो रही है जिसमें अनेकों प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, अनुकूल प्रतिकूल अच्छी बुरी हमारे इवैल्यूएशन के अनुसार, उन सबको हमको अपने अंदर उन वो हमारे लिए कैटलिस्ट हैं, और वो साधना के आप समझिए कि ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि हम किस तरह से उनके साथ डील करेंगे तो उससे हमारे अंदर की यात्रा और सुगम बनती जाएगी। एक उदाहरण दे देते हैं कि बैठते हैं लोग कि ध्यान करना है, बता दिया कि भाई ध्यान करना है, आपको ऐसे करोगे यहाँ पर केंद्र में और आप धीरे धीरे अंदर में जाओगे और भगवान को पा लोगे, बड़ा अच्छा लगता है। लोग हजारों रुपए पता नहीं डॉलर उलर दे करके, अब तो डॉलर का भाव गिर रहा है, अच्छी बात है, जो भी है मनी के रूप में वो दे पैसे दे करके वो बैठते हैं ध्यान करने, लगता नहीं ध्यान, क्यों, क्या क्या होता है? ध्यान जाता है बैठ करके वही वस्तुओं पर जो प्रिय हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन में जब हम जीवन जी रहे हैं तो हम जिन चीज़ों से आसक्ति के साथ जुड़े हैं वही चीज़ें अंदर भी आप बैठ जाएंगे। आँख मूंदने से संसार थोड़ी बदलता है, वो तो और विकट रूप में आता है, सारे भूत पिशाच जाग जाते हैं। आप कम से कम बाहर जब आँखें खुली हैं तो वो दृश्य हैं जो आपको उलझाए हुए हैं, लेकिन जब आंखें बंद की तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो पहली चीज़ ये आवश्यक है कि जीवन में जब हम गुजरते हैं अनेकों प्रकार के दृश्य आते हैं तो उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है। गर्मी, सर्दी, कई लोग उसको लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हाय कितनी गर्मी पड़ रही है, वही फिर सर्दी में इस बार सर्दी का पता नहीं, यही बस थॉट चलता रहता है, भोजन में आज क्या बना, आज क्या नहीं बना। तो ये जो बाहरी जगत के जो घात संघात हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, अब उसको लेकर के लोग पता नहीं कब तक बैठे रहते हैं। इस बीमारी का नाम है ग्रेजाइटिस, बहुत परेशान करती है, नाना प्रकार के शरीर में रोगों का ये उत्पत्ति स्रोत है ग्रेजाइटिस। ईर्ष्या लेकर, अरे भाई उसने गाड़ी ले ली नहीं ली, तू क्यों परेशान हो रहा है? अब परेशान हो रहा है कि देखो जी पड़ोसी को देखो, सुना है उसका बेटा बाहर पढ़ रहा है। दिस ईच वंस लाइफ इज यूनिक डिफरेंट, कंपैरिजन कंट्रास्ट तो ये चलता रहता है। तो क्या होता है, हम अपना जीवन तो जीते ही नहीं है, किसी और का जीवन जीने की चेष्टा में हमारा जीवन छूट जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, कहने का अर्थ ये कि हम इन चीज़ों के प्रति पहले समता का अभ्यास करें। शॉर्ट में कह रहा हूँ, गीता में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है, शीतोष्ण समय कृत्वा हानि लाभो जया जयो। कभी हानि हो जाती है तो लोग परेशान होते हैं, जब लाभ हुआ था तो वो भी तो एक गिफ्ट ही है ना, ये भाग्य दोनों चीज़ें देता है हर किसी के उसमें लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि और उसके पीछे क्या शक्तियां कार्य कर रही हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। रियलिटी ये है कि हर किसी के जीवन में जिसको वो शुभ समझे या जिसको वो अशुभ समझे दोनों चीज़ें होती हैं, आप उसको किस तरह से लेते हैं। अब आप उसी घटना को अशुभ रूप में ले सकते हैं, और फिर पंडित हैं जो राहु कालम और बेचारे शनि देव ना जाने कौन कौन से देवता उसमें मन उलझा देंगे, उनको भी अपना घर बनाना होता है, ऐसी बात नहीं है, तो देना चाहिए उनको भी। लेकिन अंत में आप लोग कहते हैं हमने तो जी बड़ी पूजा करवाई 2.5-3 साल फिर जाके ग्रह शांत हुए, उतने में तो वैसे ही शांत हो जाते वो। शायद आपको वास्तु घर बदलवा दिया, आपका दिमाग तो उलझा रहा ना उसमें, पर उसकी जगह अगर हम केवल इतना कह लेते कि भगवान ने जो दिया है या नहीं दिया है उसको हम श्रद्धा समर्पण के साथ अगर लेते, श्रद्धा की जो हो रहा है भगवान ले जाएंगे, कल्याण श्रद्धा और समर्पण, नति का भाव कि यदि मेरे जीवन में यह दिया गया है तो इसको भी मैं गिफ्ट के रूप में ग्रहण करूंगा। लेकिन गिफ्ट के बाद अब इन परिस्थितियों का मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। हर किसी को कुछ कुछ मिलता है जीवन में, और जो बहुत बड़ी कार्य के लिए होते हैं उनको कभी कभी बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं। आप देखिए कर्म की थ्योरी कैसे कोलैप्स करती है, अगर पांडव और कौरवों का जीवन देखें, है ना? पांडवों के जीवन में जन्म से ही बेचारे जंगल में पैदा होते हैं, जंगल में बार बार उनको कुछ लिखा हुआ है, फॉरेस्ट में चले जाते हैं, पर यही उनको निखारती है। तो हम हर चीज को किस एटीट्यूड से लेते हैं उसके आधार पर ये अंदर की यात्रा जुड़ेगी। वरना हम भगवान के पास भी जाके अंत में कोई क्या कहता है, मेरे बच्चे का वहाँ एडमिशन करा देना, मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे पैसे, तो क्या पॉइंट है ये? तो आप मतलब बेचारे भगवान भी कहते होंगे ये वो दे दें, वो अलग बात है, दे ना दे, ऐसे तो नहीं है कि भगवान सृष्टि के चक्र में ऑन द हाउस करते रहते हैं, ये होता नहीं है। लेकिन कोई जाके अगर उनके सामने कहता है कि देख लिया जीवन, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, तो अंतर हो गया। तो अंतर की यात्रा करने से पहले ये प्रश्न करना है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं। माता जी से किसी ने पूछा कि हमें योग के बारे में बताइए, तो माँ कहती है इसके पहले कि तुम जानो कि योग के बारे में कैसे योग करें, तुम योग क्यों करना चाहते हो? और माँ कहती है क्या शक्ति पाने के लिए, मनुष्य की सहायता करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि आजकल स्वामी जी का भी बड़ा बोलबाला है, स्वामी जी इज द हाईएस्ट पेड CEO, तो क्या इन कारणों से मेरे दुख कष्ट निवारण हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए? या माँ कहती यदि ये सब तुम्हारे अंदर भाव हैं तो तुम योग में तैयारी भी नहीं हुए, यू आर नॉट येट रेडी फॉर द योगा। जिस दिन ये भाव आएगा कि मैं तो तुम्हारा भगवान के लिए हम योग करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आपको अंतर यात्रा कैसे करनी है ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों? हम किसको सारे समय स्मरण करते हैं? जिससे प्रेम करते हैं, कोई जरूरत नहीं। फिर जिससे प्रेम करते हैं उसका फोटो देख के भी आनंद आता है, उसके बारे में सुनकर भी बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर हर चीज आपकी अंदर यात्रा की फीडर बन जाती है। जब बैठेंगे तब तो बड़ा ही मजा आ गया कि अरे मुझे समय मिला, फिर मैं अपने सपनों में खो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। तो मुख्य चीज है कि सारे दिन, श्रीमद् भगवद गीता भी यही उपाय बताती है, वो कहती है कि पहले वो बताती कि अंतकाल में जब तुम स्मरण करते हो, फिर वो कहती है लेकिन अर्जुन इसको तो ऐसे मत लेना कि बस तू अचानक अंतकाल में स्मरण कर लेगा। तो युद्ध के मार्ग से, युद्ध मा मनुस्मर युद्धश्च, तू मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध में जाता रहे। तो सतत स्मरण ये एक बहुत ही सरल उपाय है। माता जी भी ये कहती हैं, माँ के नाम को अंदर में जब थोड़ा समय मिले तो माँ के नाम को जपना, कोई कार्य करना है तो उसको माँ को अर्पित करके करना, माँ का कार्य है डायरेक्टली तो बहुत ही अच्छा है, माँ को अर्पित करके करना, सतत स्मरण करना, रिमेंबर एंड ऑफर, ये दो चीज़ें माँ ने बताई हैं। तो फिर क्या होगा कि आप अलग से समय निकाल के बैठें या ना बैठें, आप अंदर नहीं जाएंगे, अंदर बाहर आ जाएगा, वो भी लालायित है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पता नहीं सुना होगा शायद आप लोगों ने भी, हमारे घर में राम की पूजा होती थी, राम जी की, तो हमारे पिताजी वो कभी उनको जब पूजा कर रहे हो ना तो आसन वो कुछ भी हो जाए उनको वहां बैठना है, तो हम पूछते थे आप बीच में उठ के क्यों नहीं, तो कहते नहीं 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 बीच में उठोगे तो हनुमान जी बैठ जाएंगे। तो अब ये मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये कि ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है भगवान के साथ संबंध जोड़ने की। तो आप जितने तरह से, यानी आप जहां कहते हैं कि राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी खुद ही आ जाते हैं। श्री राम परमहंस इसको बड़े सिंपल ढंग से कहते हैं, कहते हैं कि तुमको अगर गैया चाहिए तो बछड़े को लेके चलो आगे, वो गैया देखो पीछे पीछे अपने आप आएगी। तो हमारे तो कर्म भाव विचार ऐसे होने चाहिए, मनोवृत्तियां ऐसी होनी चाहिए कि भगवान बाहर आ जाए। अब यही तो अर्जुन के साथ हुआ, किसी और को गीता नहीं दी गई, किसी होली प्लेस में आश्रम में बैठ करके, वो और बात है कि प्रवचन करते हैं लोग, लेकिन गीता कहाँ दी गई? युद्ध भूमि में किसको दी गई? अर्जुन को। अर्जुन भी कहता है कि मुझे क्यों चुना आपने, ऐसी विशेष कृपा मेरे ऊपर? तो कहते नहीं, हमारा जन्मों का नाता है। और फिर वो कहते तू मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है, देर आर टू थिंग्स परफेक्टली प्लीजिंग टू गॉड इन हिज डिवोटी एंड सर्वेंट। भगवान को क्या प्रिय है? हम तो बैठ के सीधा अंदर जाने के, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं हमसे? उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा है? तो वो कहते हैं कि वन हु स्वीप्स हिज टेम्पल फ्लोर्स इन साइलेंट एडोरेशन, दिखावा करके नहीं पर साइलेंट एडोरेशन स्मरण करता हुआ भगवान, सबरी का उदाहरण है। द सेकेंड हु फाइट्स इन द ग्रेट बैटल ऑफ लाइफ फॉर द डिवाइन कंज्यूमेशन इन ह्यूमैनिटी, वहाँ अर्जुन हनुमान और लक्ष्मण की बात आती है। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो स्वयं भगवान हाथ पकड़ के लेके चलेंगे हमको, फिर जब बैठेंगे तो स्वाभाविक होगा क्योंकि कोई व्यवधान नहीं होगा, डिज़ायर की जो पकड़ है जो हमको अंदर भी नचाती है बाहर भी, वो ढीली हो जाएगी। तो कोई भी कर्म हम करते हैं निष्काम भाव से करना, ये सब उसकी पैकेज है। आजकल ये तरीका आ गया है कि वो पैकेज के नाम पर क्या होता है, आप 10 दिन कैंप में आ जाइए, वहाँ आपको वो मूंग दाल या चना खाने को मिलेगा। और आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे होटलों में लोग करते हैं, उसके बाद फिर आपको ये हम ध्यान सिखाएंगे, अब वापस जाएंगे, इट विल बी द सेम मंकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बात ये नहीं है, ये पैकेज है, पूरा जीवन पैकेज है, इसको भगवान को निवेदित करना। फिर इट डजेंट मैटर है कि यहाँ पे आश्रम में एक मृत्यु हुई थी किसी की, तो माँ कहती हैं कि उसका पूरा बीइंग व्यक्तित्व मैंने देखा कि वो सर्विस ट्री जो है, जो हमारे आश्रम के परिसर में है समाधि के ऊपर जो छाया के रूप में, वो पूरा देह उसका वो सर्विस ट्री के फूलों जैसा बन के, पुष्प जैसा बन के सीधा श्री अरविंद की सुपरमेंटल लाइट में चला गया। अब फिर वो बताती हैं और कि मालूम है किस कारण से ऐसा हुआ, खुद कहती क्योंकि वो केवल और कुछ नहीं करता था, केवल एक भाव से वो काम करता था सब कुछ, कि मुझे श्री अरविंद का काम करना, यही बस उसके अंदर ये उत्साह था। तो दैट्स हाउ इट्स ए एटीट्यूड। और जैसे जैसे हम अपने बाहरी, स्वाभाविक है ये, जब एटीट्यूड हम डेवलप करेंगे मनोवृत्तियां, तो ये सहज समाधि होगी, आपको अलग से बैठना ये आवश्यक नहीं है। आप जब भी जा रहे होंगे तो ध्यान यहाँ लगा रहेगा, अपने आप लगा रहेगा, आनंद से लगा रहेगा, बाहर आना मुश्किल होगा, कोई बातचीत होगी जिसमें व्यर्थ की बातें हो रही हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, स्वतः ही आप वहाँ बैठ करके आपका ध्यान यहाँ चला जाएगा भगवान की उपस्थिति के ऊपर। तो जस्ट कंसेंट्रेट हियर इन द हार्ट ऑन मदर्स प्रेजेंस, और उसी चीज को जीवन में कंटिन्यू करना है हृदय में माँ की उपस्थिति पर। लेकिन ये सारी चीज़ें ये एक पैकेज है, ये ऐसे नहीं होगा कि एक मैकेनिकल प्रोसेस के रूप में।